गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधा नाथ जय राधा राधा नाथ राधा राधा नाथ जय राधा राधा नाथ जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा हरे कृष्णा श्री श्री राधा राधानाथ भगवान की श्री श्री गौर निथाई की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर एक बार आपका स्वागत है पालघर के मंदिर में रविवार की संध्या सभा में। भगवान अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं, इसके शास्त्र में कई उदाहरण आते हैं। बहुत कहानियां हैं शास्त्र में कैसे प्राथमिक रूप में भगवान अपने भक्त के लिए इस दुनिया में आते हैं। बाकी राक्षसों को मारना है, धर्म को स्थापन करना है, वो तो है ही, लेकिन अगर नंबर वन का कारण क्या है वो पूछा जाए कि भगवान क्यों आते हैं, तो अपने भक्तों को रिझाने के लिए आते हैं। और भक्त दुनिया में क्यों आते हैं? हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। भक्तों का और संतों का यहाँ पर आने का कोई उद्देश्य? नारद मुनि क्यों आते हैं? रूप गोस्वामी क्यों आए? सनातन गोस्वामी क्यों आए? ये सब भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, और वो केवल पतित जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कि जब वो पतित जीवों का उद्धार करने का कार्य करते रहते हैं, उस समय भगवान उनके संग के लिए व्याकुल रहते हैं, इसलिए भगवान अलग अलग रूप में उनके साथ में आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, राधा राधानाथ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे बात तो नहीं करते हैं। हम उनको भोजन खिलाते हैं, कब वस्त्र पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, उत्सव मनाते हैं उनके लिए, उनका श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमें वो बताते नहीं, अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया, अच्छा किया, कुछ प्रतिसाद नहीं मिलता है उनका। लेकिन इन संतों के विषय में वो नित्य रूप में प्रतिसाद देते रहते हैं, क्योंकि जिनका हृदय भौतिक विकारों से मुक्त होता है उनके लिए भगवान साक्षात है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, है ना? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनके लिए वो मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो चित्रपट नहीं है, चाहे वो पेंट से बना हो, पत्थर से बना हो, लकड़ी से बना हो, या मेटल से बना हो, या किसी धातु से बना हो, या रत्न से बना हो, या मन की भावना से बना हो। आठ प्रकार के विग्रह होते हैं, आठ वस्तुओं के द्वारा बनते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए वो विग्रह नहीं होते हैं, वो साक्षात भगवान होते हैं, प्रत्यक्ष। तो सनातन गोस्वामी के साथ में भी भगवान ने बात किया, अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट हो गए, वो भजन कर रहे थे अद्वैत आचार्य अपने वट के नीचे, जिसका नाम अद्वैत वट है, वृंदावन में है वो, मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे है। तो भजन कर रहे थे, उनके साक्षात प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने उनका सेवा किया। जब उन्होंने उनको जाते समय पुरुषोत्तम चौबे नाम के मथुरा के ब्राह्मण को दिया, तो उनके घर में वो कभी मूर्ति कभी साक्षात, कभी मूर्ति कभी साक्षात, जब इच्छा हो तभी मूर्ति रूप में आकर भोग ले रहे हैं, भोग लगाए जा रहे हैं, जब इच्छा हो तो उनके बच्चों के साथ में यमुना किनारे खेल रहे हैं, ऐसे लीला है उनकी। श्रीनाथ जी महाराज हमारे गोवर्धन में, उनका भी यही लीला है। कहते हैं कृष्ण भगवान का साक्ष्य लीला में दिल नहीं भरा, इसलिए श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। वो श्रीनाथ जी का रूप तो उन्होंने दिखाया था, तब भी प्रत्यक्ष थे, लेकिन जब अंतर्धान हो गए तो दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट होने लगे। वो उनकी सारी लीला ऐसे ही है, आदि प्रत्यक्ष आदि मूर्ति लीला। एक सुंदर कहानी सुनाता हूं आपको, कैसे भगवान के भगवान भक्त पर प्रेम करते हैं। उनके एक भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। वो श्रीनाथ जी जो थे वो श्रीनाथ जी के अष्टछाप भक्त बहुत फेमस हैं। अष्टछाप यानी आठ भक्त, जैसे राजा रानी के होते ना अष्ट सखी, वैसे उनके अष्ट छाप थे, अष्ट सखा। उसमें सूरदास जी आते हैं, उसमें चित्त स्वामी आते हैं, परमानंद स्वामी आते हैं, उसमें कुंभन दास भी आते हैं। तो कुंभन दास बड़े बूढ़े थे उम्र में, बड़े साक्ष्य भाव में भगवान के साथ में थे। तो श्रीनाथ जी उनसे मूर्ति से बाहर आकर प्रत्यक्ष रूप में संवाद करते थे, बात करते थे उनसे। तो एक दिन बीच रात को आए, हाँ पुजारी ने उनको शयन कर दिया था, तो बीच रात में आए और कुंभन दास जहाँ सो रहे थे गोवर्धन के इलाके में, वहाँ उनको जगाया, उठो। बोले अभी इतनी रात गए का क्यों आयो? बोले मुझे वो गोवर्धन के गोवर्धन यतिपुरा में एक गोपी है, अभी ये श्री कृष्ण भगवान कभी थे द्वापर में थे, कुंभन दास कभी थे, अभी कलयुग में थे, कुछ सैकड़ों साल पहले थे, अभी 200-300 साल पहले। तो वो यतिपुरा में बोलते एक गोपी है, वो रोज ऐसे माखन बनाती है, वो मेरा ही विचार करती है कि मैं आऊँगा और चोरी करूँगा। अभी जब कृष्ण थे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में तो वो रोज सबको दिखते थे, आते थे, खेलते थे, सब क्रीड़ा करते थे, तो वो ठीक थी बात सोचने की ऐसे, लेकिन कृष्ण तो है नहीं दुनिया में, लेकिन गोपी ऐसे भाव में है कि वो सोच रही है कि अभी मैं मंथन कर रही हूँ, मक्खन बना रही हूँ, तो कृष्ण मेरे घर पे आने चाहिए। तो ये श्रीनाथ जी बता रहे उनको कुंभन दास को कि वो मेरे बहुत याद करती है मुझे, आज जाकर उसका मक्खन चोरी करते हैं। बोले इतनी बीच रात में? रात में जाएंगे तो मिलेगा ना चांस, दिन में पकड़े जाएंगे। तो कहते देखो ऐसा है कि आप तो बालक हो और जवान भी हो, लेकिन मैं तो बुढ़ा हूँ, जब पकड़े जाने का समय आएगा तो आप तो भाग जाओगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगा, फिर पीटूंगा मैं ही। बोले कोई बात नहीं, मैं बचाऊंगा आपको, मैं हूं ना, चलो आप मेरे साथ। तो उसको लेके गए और वो बुढ़िया गोपी के घर पे छत पे चढ़े और छत से घर पे उतरे, मतलब पेड़ पे चढ़े, पेड़ से छाखा से छत पे चढ़े, छत से घर पे उतरे और घर से ऊपर से ही वो जो लटका हुआ मटका था उसमें से मक्खन खा रहे। अब ये देख रहे हैं, और वो कैसे खा रहे लटके हुए, ऐसे ना लटके हुए वो मटके पर, जो जिस डोरी से मटका लटका है ना वो उसके अध्यक्ष पर, वो मटके की चोरी हो रही है, इधर देखो अभी आप ऐसे लटके हुए और एक हाथ से मक्खन खा रहे हैं। उतने में लटके हुए कृष्ण के श्रीनाथ जी महाराज के धोती का पीछे का होता है ना हमारा, वो डालते हैं ना हम लोग पीछे, वो ढीला होने लगता है, मतलब फिसलने लगता है। तो भी माखन इतना मधुर है, इतना प्रेम का माखन है, तो कैसे छोड़े उसको, माखन खाना बंद भी नहीं करना है, क्योंकि माखन में इतनी रुचि है कि वो उसको उसमें बीच में विश्राम देकर धोती को ठीक करे तो वो इच्छा नहीं है ऐसी। तो बहुत देर तक चलता रहा ऐसा लीला, धोती अभी छूटने वाली है, गिरने वाली है। तो ये इधर कुंभन दास देख रहे हैं उसको, क्या करेंगे अभी, तो क्या करते हैं भगवान, उनके कंधे के पीछे से दो हाथ निकलते हैं ऐसे, दो हाथ आगे ऐसे ना, एक ऐसा पकड़ा हुआ ऐसा है, तो पीछे से दो हाथ निकलते हैं, पीछे जाते हैं, वो धोती को ठीक करते हैं, वापस अदृश्य हो जाते हैं। और ये कुंभन दास देख रहे हैं, उतने में वो गोपी जग जाती है, अरे चोर चोर चोर, कौन है चोर चोर? तो ये अपने नाथी महाराज भाग जाते हैं और ये बुड्ढे बाबा भाग नहीं सकते। बीच रात में आप देखो, आप बीच रात में कोई बुड्ढा भी आपके घर में बैठा मिलेगा ना, अच्छा बुड्ढा, फिर भी आपको लगेगा ना चोरी हो गई। तो वो बुड्ढे को बहुत पीटते हैं सब लोग मिलकर। और श्रीनाथ जी महाराज उधर ही खड़े हैं अदृश्य रूप में, मतलब इनको दिख रहे हैं, बाकी किसको दिखते रहे, ताली पीट रहे हैं। और वो उनको बोल रहे हैं, अरे अच्छा पिटवा लिया मुझे, अच्छा पिटवा लिया तुमने, मैंने कहा था मुझे भागने को नहीं हो रहा है, लेकिन तू तो वो अच्छा पिटवा रहे। तो उनको लगा कि चोर भी है और पागल भी है, बात किससे कर रहा है। तो ये कुंभन दास की पत्नी उस समय गर्भवती थी। अभी देखो कुंभन दास, अभी आप, मैं तो बता रहा हूँ कि वो वृद्धावस्था में थे, और ये बता रहा हूँ कि पत्नी भी गर्भवती थी। तो ऐसा उनको वरदान था कि आपको बालक होगा। वो कह रहे इतनी बुढ़िया अवस्था में बालक कैसे होगा? श्रीराज जी ने कहा मेरी कृपा से होगा। तो उनकी पत्नी ऐसे ही दिव्य रूप से गर्भवती हो गई, आम तरीके से नहीं हुई। तो जैसे ये बालक हुआ ना, तब उनके मन में ये छवि जो थी ना चतुर्भुज कृष्ण की, विष्णु वाली नहीं, वो चतुर्भुज, दो हाथ से मक्खन खा रहे हैं और दो हाथ से धोती ठीक कर रहे हैं, ये चतुर्भुज भगवान की जो मूर्ति थी बालक कृष्ण की, वो इनके मन में ऐसे बस गई थी ना, दिन रात उसका ही स्मरण करते थे। वो इतना भाव विभोर होते थे, पिट गए और चिल्लाते भी रहे, लेकिन उनको इतना आनंद आ रहा था। तो उन्होंने जैसे उनको पुत्र हुआ, उसका नाम रखा चतुर्भुज दास। समझ में आपको आए? किसके दास? जो उन्होंने देखा था ना। एक बार मैंने कहानी ऐसे भी सुनी थी कि कुंभन दास जी ध्यान में बैठे थे, और वो ध्यान में उनको नजर आता है कि कृष्ण सिन्हा जी महाराज किसी के घर में लटक कर मटके में से मक्खन खा रहे हैं, और फिर उनके दो भुजा निकलती है और एक्स्ट्रा, और वो धोती ठीक करती है। और तब घर जाकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम चतुर्भुज दास रखा। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, भाव तो एक ही है। उनको कंधे से दो हाथ निकालकर धोती ठीक करके वापस जाने वाले कृष्ण का दर्शन हुआ था। और ये चतुर्भुज राज्य थे, वो भी कुछ कम नहीं थे, वो भी अष्टछाप में से एक है, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास, चित स्वामी। तो चतुर्भुज दास भी भगवान के साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप करते थे, इनका श्रीनाथ जी का प्रत्यक्ष संबंध था, दोस्ती। और श्रीनाथ जी महाराज वो भोजन भोजन आरती वारती हो गए ना, उस समय वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोकुलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी, बड़े संत थे, मशहूर संत थे। वल्लभाचार्य जो वल्लभ भट्ट थे, चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनको आशीर्वाद मिला था, उधर है मायापुर में रुद्रद्वीप है, वो रुद्रद्वीप में वो आए थे वल्लभ भट्ट जी, उनको नीला लोहित शिव ने दर्शन देकर कृपा किया था और कहा था कि तुम एक संप्रदाय आरंभ करना, इसका अंतिम स्थान मैं ही रहूँगा, मैं उस संप्रदाय का प्रधान रहूँगा, आचार्य। तो शिवजी उस प्रधान संप्रदाय के आचार्य बने, शिव संप्रदाय, यानी कौन सा संप्रदाय? पुष्टि मार्ग। तो आप वल्लभ भट्ट बंद कराओगे और आपके द्वारा बाल कृष्ण की सेवा होगी। तो वो वल्लभाचार्य की ब्रज में कई जगह बैठक है, सब जगह बैठक है। उनके दो पुत्र थे, वो भी ऐसे ही सिद्ध भक्त थे, वो मूर्ति की सेवा करते थे, लेकिन मूर्ति से बात भी करते, मूर्ति भी उनसे बात करती थी। तो उनके द्वारा वो आरती पूजा भोग लगा के लेते थे, और जब दिल करा तभी चतुर्भुज दास के साथ खेलने जाते थे, क्योंकि कुंभनदास तो बड़े बूढ़े थे, चतुर्भुज बालक थे, तो उनके साथ खेलते थे। एक दिन ऐसे ही बाहर आ गए सिन्हा जी महाराज और चतुर्भुज दास से मिले। उन्हें चतुर्भुज, चलो आज कुछ खेल खेलते हैं। बोले चलो क्या खेलना है आपको? कहते तू घोड़ा बन जा, मैं सवारी करूँगा। अभी चतुर्भुज दास थोड़ा सा पागल है, ऐसी उसकी ख्याति थी उधर, क्योंकि वो जब श्रीनाथ जी महाराज से बात करते थे ना, तो श्रीनाथ जी महाराज किसको दिखते नहीं थे, उसको ही दिखते थे खाली, और ये उनसे बात करता था। समझो भाई, अब यहाँ पर कोई है ही नहीं और मैं बैठकर प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, अधोक्षत का नाम लेके बुला रहा हूँ, हाँ जय कृष्ण का नाम लेके बुला रहा हूँ। तो वो बोलेंगे क्या पागल है, कोई है ही नहीं यहाँ पर, किससे बात कर रहे हैं? उस तरह से वो बात करते थे। तो लोगों को लगता कि लड़का पागल है, वे क्या करेगा, बल लड़का है, बालक है, तो क्या कर सकते, ठीक है। तो एक दिन वो घोड़ा बन गया, उसके ऊपर सवार हो गए श्रीनाथ जी महाराज, ऐसे चाबुक लेके हैट हैट भी कर रहे हैं, और वो घोड़ा बन के जा रहा है, तो वो बोले लो अभी सब लोग देख रहे हैं उसको भी घोड़ा बन के पूरा मंदिर में डोल रहा है, वो भगवान उसको यहाँ वहाँ सबके बीच पैर में से घुमा रहे हैं सब जा रहा है बीच में से। अरे बहुत ही पागल हो गया बच्चा। तो ये बहुत देर तक लीला चलती है, विश्वनाथ जी के मंदिर में सब जगह प्रांगण में ये घोड़ा बनकर घूम रहे हैं। बहुत देर के बाद में उनको ना मूत्राशय भर जाता है उनका, तो भगवान को बोलते हैं अरे अभी तो मुझे पेशाब करना है, लघु शंका करनी है, थोड़ा ब्रेक तो दे दो। तो बोलते हैं घोड़ा बने हो घोड़े की तरह करो। घोड़ा कभी ब्रेक लेता है क्या? घोड़ा गाड़ी चला रहा है तो अपना काम चलते रहता है उसका, नंबर वन नंबर टू सब साथ में चलता है। तो वो अभी हंस रहा है वो भी, लेकिन वो कह रहा है अरे मुझे जाना है। तो कहता है मैंने कहा ना आपको घोड़े की तरह करो, तो फिर उसको रहा नहीं जाता ना, पूरा फुल हो गया तो फिर वो चालू कर देता है। अभी पूरा घोड़े की धार जो है सब मंदिर में घूम रही है, और अभी तक तो बच्चे समझ कर पागल समझ कर सब लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन ये तो हद हो गई ना, भगवान के मंदिर में कोई पेशाब कर रहा है तो कैसे चलेगा। तो सारे जो पांडा होते हैं वो आके भाग के आते हैं और पीटने लगते हैं उसको, और सेना जी तुरंत उसके ऊपर से निकल जाते हैं और दूर खड़े रहकर ताली बजाते हैं और इसको पीटा जा रहा है। तो वो बोल रहा है भगवान को कि अरे तुमने तो कहा था घोड़े की तरह, मैंने किया, देखो मेरे को पीट रहे हैं। तो वो लोन रहा है पागल ही लड़का ये किससे बात कर रहा है ये, और सेना जी दिखाई पड़ रहे हैं, सेना जी उसको दिखाई पड़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं उसके साथ में, और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं पीट रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस दिन ना सारे पुजारी लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं इस मामले में कि अभी तक तो ठीक है बालक था ये था, अभी तो हद हो गई, अभी वो टट्टी पेशाब करने लगे तो कैसे होगा, इसको बोलते मंदिर से निकाल दो, मंदिर में इसको प्रवेश देना नहीं, ये बालक तो बहुत ज़्यादा हद के बाहर जा रहा है, उसको निकाल देते हैं। वो चतुर्भुज दास कुम्भन दास अपने पिताजी के घर पर चले आते हैं, उनको खबर मिलती है, बहुत रोते हैं वो कि विश्वनाथ जी से मैं कैसे मिलूँगा। तो विश्वनाथ जी को बड़ा दुख होता है जब ये उनके सामने हो रहा है ना सब कुछ, उनको निकालने का बरी करने का काम। तो रात को जब शयन करने को जाते हैं ना विट्ठलनाथ जी, तो उनको बताते हैं अरे विट्ठलनाथ जी मैंने ही तो घोड़ा बनाया था उसको, और मैंने ही बोला था उसको करो घोड़े की तरह, उसका कोई दोष नहीं है इसके अंदर, मैं उसके बिना रह सकता नहीं हूँ, उसको तो मंदिर में बंद प्रवेश बंद नहीं कर सकते। तो भाग के गए विट्ठलनाथ जी उनके घर पे और माफ़ी मांगी उनसे कि आपको पिटवाया, आपको निकालवा दिया, नहीं आप आओ ऐसा है भगवान, कितना प्रेम होगा उसको भगवान को चतुर्भुज दास के ऊपर। ऐसे कई जगह पर भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया है। सुबह मैंने बताया नामदेव की कहानी आपको, इतनी श्रद्धा थी इतना प्रेम था कि भगवान रह नहीं पाए ब्रह्म राक्षस के अंदर, परमात्मा के रूप में बैठ नहीं पाए, उनको बाहर आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा उनको। ऐसे वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, हाँ आप जानते हैं ना गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी के आचार्य हैं, राधा रमन जी को उनके उन्होंने प्रकट किया था। तो आप सब जानते हैं कि शालिग्राम शिला उनके पास थी जो गंडकी नदी से लेकर आए थे, हाँ, और उसमें से राधा रमन जी प्रकट हो गए थे। तो राधा रमन जी प्रकट हो गए ना तो उनको लगा कि बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, इतना भगवान ने चमत्कार दिखाया। कैसे चमत्कार दिखाया कि उनके पास बहुत लोग ऐसे, एक व्यक्ति राजा जैसा व्यक्ति आया था, धनी व्यक्ति, वो सभी विग्रहों के लिए मुरली वस्त्र मुकुट ये वो अलंकार सब लेकर आया था, श्रृंगार के साधन, और सभी गोस्वामी को जितने सबके विग्रह थे ना उसमें सबको दे दिया उन्होंने। इनके पास भी आए तो बोलते हमारे तो ठाकुर जी गोल मटोल है, हमारे ठाकुर जी को अभी क्या पहनाएंगे हम, कोई लहंगा पैजामा कैसे पहनाएंगे उनको। तो फिर भी उसने जिद किया कि नहीं नहीं आपको लेना ही होगा, आपके लाया हूँ तो आपको रखना ही होगा। और जैसे ही वो देखते हैं उसको तो कहते हैं अरे मेरे ठाकुर को अगर अंग होते तो कितना अच्छा होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर नरसिंह भगवान प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश से प्रकट हो सकते हैं तो इनके अंदर से ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो सकते, ऐसा उनके मन में विचार आया नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन। और चतुर्दशी का जब पूर्णिमा हुआ तो दामोदर नाम के 12 शिलाओं में से एक शिला में से प्रकट हो गए राधा रमन जी भगवान, इतना चमत्कार दिखाया उन्होंने। आज भी आप राधा रमन को देखो, शालिग्राम कैसे होते, चमकदार काले रंग के होते ना, वैसे उनका शरीर है पूरा, और उनके पैर के पीछे आज भी वो शिला है जिसमें से प्रकट हुए थे वो, देखो आप। तो उनका मन में विचार आया कि ये ठाकुर जी ने इतना कृपा किया है तो बढ़िया उत्सव होना चाहिए। लेकिन साधु के पास कहाँ पैसा होता है, साधु ने सब बाजार से पैसा उठाया, कर्जा लिया, वो बताया 15 दिन में लौटा दूंगा। बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया, शोभा यात्रा किया, पूरे वृंदावन में उनको लेके घूमे, सब जगह पर पुष्प वर्षा हुई, बहुत बड़ा अभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, बहुत धूमधाम से उत्सव समाप्त हो गया और फिर सेवा होने लगी उनकी। लेकिन 15 दिन का वादा किया था तो 15 दिन में पैसा नहीं आया उनके पास, तो बड़े दुखी हो गए। वो साधु है, अपने वचन को मानने वाले हैं, तो 14वीं रात को ना रात भर नहीं सो सके वो, क्योंकि अभी 14वीं रात 15वें दिन के जाके पैसा देना है तो पैसा है ही नहीं। तो 14वीं रात में रोते रहे बहुत कि कैसे मुंह दिखाऊं उनको। लेकिन 15वें दिन सब दुकान में गए बोलने के लिए कि माफ़ी चाहता हूं मैं, मुझे और कुछ समय चाहिए, मैं जानता हूं आज का दिन था लेकिन मैं आप लौटा नहीं पा रहा हूं, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। तो पहले दुकानदार के पास गए और जब वो उनको बोले तो कहते महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, कल ही तो आप आए थे, सब धन लौटा के चले गए। तो उनको लगा कि मैं साधु हूँ इसलिए दया से बोल रहे होंगे, प्रामाणिक हूँ, आ गया हूँ उस दिन मुंह दिखाने के लिए तो इसलिए बोलते होंगे, माफ करते होंगे कर्जा अपना, ऐसे बोलते होंगे। दूसरे के पास गए तो वही बोला कि महाराज जी को शर्मिंदा कर रहे हैं आप, कल ही तो आप आए थे पूरा पैसा देकर गए। बोले कभी आए थे, देखो ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे सब उन्होंने वर्णन किया, समय सबका पैसा दिया और रसीद बनाई सब दिखाया उनको उन्होंने। सब दुकान में गए, सब उनको यही जवाब मिला। तब उनको समझ में आया कि राधा रमण देव भगवान स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी बनकर उनका सारा कर्जा चुका के आए थे। अब ये कथा हमने कहां सुनी, ये कथा हमने श्रीरंगम में जब हमारी 2010 की यात्रा हुई थी, उस 2010 की यात्रा में हम वो जो घर था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, वेंकट भट्ट का, उसी घर में हम रह रहे थे यात्रा के समय। उधर रमेश चंद्र गोस्वामी जो थे नंदगांव के, वो भी यात्रा करने के लिए आए थे हमारे साथ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के 17वीं पीढ़ी के जो आचार्य हैं मुरली भट्टर, जो उस घर के मालिक हैं, वो भी उसमें हमको मिलने आते थे। और वो हम लोग रहते थे वहाँ पर, लेकिन सब यात्री लोग वहाँ पर यात्रा करने आते थे, तो मैं उनको वो कमरे का टूर देता था कि कहाँ कहाँ महाप्रभु बैठते थे, कहाँ महाप्रभु जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, इनके साथ बैठकर रात भर कृष्ण कथा किया करते थे। वो भी जगह है, उनके विग्रह हैं वहाँ पर, जो जिनके सामने बैठकर वो कथा किया करते थे रात भर वहाँ पर। कैसे रहते थे दिन भर श्रीरंगम के मंदिर में, हरेक नाम संकीर्तन करते थे। तो ये एक दिन यात्रा के समय मुरली भट्टार और रमेश चंद्र गोस्वामी और हम साथ में एकत्र हुए इस रूम में तीनों। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहानी किसने बताई, मुरली भट्टार ने नहीं, रमेश चंद्र गोस्वामी ने बताई। तो मुरली भट्टार ने कहा कि हमारे पास भी कहानी है ऐसी, तो क्योंकि उनके आचार्य रामानुजाचार्य ना, तो रामानुजाचार्य एक दिन मंदिर आए तो उनको एक गरीब ब्राह्मण मिला, बहुत गरीब, इतना दुबला पतला, ऐसे भूख से कांप रहा है ऐसा। तो रामानुजाचार्य को दया आ गई, उन्होंने कहा कोई चिंता मत करना, मैं आपको अनाज भेजता हूँ, अनाज की व्यवस्था करता हूँ, मैं आपको अनाज सप्लाई करूँगा। ऐसे बोल के वो अगले दिन प्रचार के लिए चले गए और भूल गए। 3 महीने के बाद लौट के आए, तब उनको याद आया, क्योंकि ये ब्राह्मण उनको मिला, थोड़ा अट्टा कटा हो गया था अच्छी तरह से, थोड़ा दुबला पतला था पहले, आज भी थोड़ा ठीक से हो गया था, लेकिन जैसे ही देखा तो उनको याद आ रहे, मैंने उसको वादा किया था, मैं तो गया ही नहीं उसको देने के लिए। वो जाके उससे माफ़ी मांगने लगे, ब्राह्मण देवता माफ़ी को माफ़ करना, मैंने आपको वादा किया था लेकिन मैं तो भूल ही गया पूरा। बोले महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, जिस दिन आपने बताया अगले दिन तो आप आके सब अनाज देके गए और नियमित रूप से अनाज मेरे घर पे पहुंचाया जा रहा है, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। तुरंत उनको ध्यान में आया कि श्री रंगनाथ जी स्वयं रामानुजाचार्य बनकर उस ब्राह्मण के घर पे अपने भक्त के द्वारा दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहानी बताई। एक्चुअली पहले मुरली भट्टार ने रामानुज आचार्य की कहानी बताई, और उसके जवाब में रमेशचंद्र गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहानी बताई। तो हर जगह पर भगवान ने ऐसा किया है, हर जगह पर। इसे चौक हमारी वो जनाबाई थी, हाँ उनको पंडरपुर के एक आगे गांव है गोपालपुर, बहुत उसको तकलीफ देते थे उनके ससुराल के लोग, ये करो वो करो ये काम करो, सब भारी काम उसको देते थे। तो कभी भगवान जब वो चक्की पीस रही है तो भगवान उसके कपड़े धो देते थे, कपड़े धो रहे हैं तो भगवान उसकी चक्की पीसते थे। देखो आप कितना प्रेम से भगवान अपने भक्तों की सेवा करते। विट्ठल अपने मंदिर में, लेकिन इससे घर में आके चाकरी कर रहे हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना, वो व्याकुल रहते हैं। भक्तों को ऐसा लगाते लगता है कि बहुत कष्ट में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे आके उनकी सेवा करते हैं। वो चोखा मेला था ना, चोखा मेला, उसके हाथ से उसके खीर खाते थे भगवान प्रेम से। चोखो बाची खीर ताकत हो, नहीं हाँ नाम्याची खीर ताकत हो, चोखे बाची गुरु गुरे हाकत हो। क्या नहीं करते भगवान, देखो शूद्र का काम करते हैं अपने भक्तों के लिए, और उनके भक्त भी कई सारे शूद्र हैं। अभी उड़पी में हम गए थे, अभी परसों ही आया उड़पी से मैं, दो दिन पहले। तो उधर कनकेन किंडी है, एक जगह है कनकेन किंडी, यानी कनक दास की खिड़की। तो कनक दास वो शूद्र था, तो वो आया मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो ब्राह्मणों ने उनको भगा दिया वहां से। तो फिर परेशान हो गए वो, उनको दर्शन करने का था भगवान का, तो वो खिड़की के पास जाके खड़े हो गए। और भगवान ऐसे खड़े हैं और खिड़की इधर है, और ऐसे सब लोग दर्शन करते रहते हैं। यहाँ से आते हैं पुजारी लोग, यहाँ सब लोग दर्शन करते हैं, यहाँ से ही बंद हो जाता है। तो वो यहाँ पर आकर रो रहे हैं, अपनी वीणा लेकर रो रहे हैं, पूजन भजन गा रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तो पुजारियों ने भोग लगाया भगवान को, पट बंद कर दिया। वो फिर पट खोलने को आए ना, तो क्या देखा उन्होंने, भगवान इधर मुड़े हुए हैं। पूरी मूर्ति ऐसे पत्थर में स्थापन की गई मूर्ति है, वो हिल नहीं सकती, पूरी तरह से 90 डिग्री में घूम के उसको दर्शन दिया भगवान ने, उसने दर्शन वहां से किया। आज भी भगवान उस खिड़की की तरफ ही खड़े हैं, वापस नहीं घुमा सके वो, दरवाजा इस तरफ है, भगवान ऐसे देख रहे हैं, वो उधर खिड़की है, और खिड़की के सामने कनकदास की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे भगवान है हमारे। तो वही जगन्नाथ भगवान है। वो कैसे, एक लड़की थी जो बैंगन जिस खेत में बनता है ना वाड़ी, उसके काम करती थी वो। तो वो बैंगन बीनते बीनते गीत गोविंद गा रही है। कल मैंने बताया ना आपको कहानी गीत गोविंद का, नहीं बताया शायद, हरे कृष्णा टीवी पर बताया मैंने, मैं भूल गया। चलो पहले आपको वो बताते हैं। हाँ ये जयदेव जी थे ना, जयदेव गोस्वामी जी, ये पहले ब्रह्मचारी थे और जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आए थे, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आए थे। एक ब्राह्मण था, वो जगन्नाथ को रोज बेचारा पुकारता था कि मेरे घर में कन्या है, उपवर कन्या है, उसका विवाह होना चाहिए, भगवान आप भी कुछ कर सकते हो, मैं तो आपके चरणों में दास हूँ, आपके बिना कौन करेगा, आप ही के सहारे हूँ। तो जगन्नाथ वो स्वप्न दिया उसको, जगन्नाथ ने कहा मेरा एक अच्छा भक्त आया है जगन्नाथपुरी में, उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा मैं, अपनी लड़की के साथ। तो बोले वो ब्रह्मचारी करने के लिए आया है, लेकिन तुम कल जाना फलाना जगह पर जाना, उसको लड़की को ले जाना और बोलना कि जगन्नाथ की आज्ञा हो गई है, आपकी साथ मेरे बेटी का विवाह करना है। उधर जगन्नाथ ने उनको स्वप्न दिया, किसको, जयदेव को। बोला जयदेव कल एक ब्राह्मण आएगा अपनी कन्या को लेकर, उसके साथ विवाह कर लेना। बोले भगवान मैं तो ब्रह्मचारी बनने के लिए आया हूँ, मैं तो आप बोल रहे विवाह करो। बोले कुछ नहीं, वो पद्मावती बहुत अच्छी लड़की है, भक्त है मेरी, और वो आपके लिए अनुरूप है, आप विवाह करो, भगवान के सामने क्या बोल सकते हैं। अगले दिन आया ब्राह्मण कन्या को लेकर, तो क्या करना, एक्सेप्ट करना पड़ा उनको। और उसके बाद में उनको भगवान की आज्ञा हुई स्वप्न में से कि चलो आप नवद्वीप जाओ। तो नवद्वीप गए और वहां पर उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है ना, जय जगदीश हरे, 10 अवतारों का वर्णन किया। तो बड़ी लंबी कहानी है, कोई बात नहीं। उसके बाद में उन्होंने गीत गोविंद लिखना शुरू किया। ये गीत गोविंद जो है ना, वो सारे भक्ति शास्त्रों में से परम माधुर रस का शास्त्र है, जो आम आदमी पढ़ नहीं सकता है, वो पढ़ना भी नहीं चाहिए उसको, इतना किसकी योग्यता नहीं है। जो परमहंस लोग हैं वो बहुत रसिक भक्त है भगवान की, वही उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ऐसी लीलाओं का वर्णन है कि हम लोग उसके योग्य नहीं है पढ़ने के लिए। तो वो जयदेव गोस्वामी इतने सिद्ध महात्मा थे कि राधा माधव उनके विग्रह थे जिनकी वो सेवा करते थे। तो राधा माधव के विग्रह कई बार प्रकट हुए उनके लिए, वो चंपा के फूलों से माला बनाकर उनको सेवा करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जयदेव जी के सामने प्रकट हुए वो, ऐसा जीवन था उनका। पति पत्नी दोनों सिद्ध महात्मा थे, रत थे भगवान की भक्ति में। और जयदेव जी को वो कोई कल्पना करके काव्य लिखते नहीं थे, भगवान की कहानी हमको कि ड्रामा बनाना है तो एक कोई स्क्रिप्ट बना दिया, नाटक काल्पनिक होता है ना, वो बाहर जो नाटक होते हैं वो क्या होते हैं, सब काल्पनिक होते हैं, कल्पना करके लिखते सब। लेकिन इनको सारा लीलाओं का दर्शन हुआ करता था, और जो लीलाएं देख रहे हैं उसका ही काव्य बनाते थे वो, जो देखते थे वो लिखते थे, जो देखते थे वो लिखते थे। ऐसे अवस्था में थे वो, ये दुनिया में है ही नहीं, वो शरीर दुनिया में है लेकिन दर्शन कर रहे हैं दिव्य लोक का, वहां पर क्या हो रहा है, ठाकुर जी के बीच में क्या हो रहा है। तो एक लीला देख रहे हैं कि भगवान राधा रानी को मना रहे हैं, राधा रानी नाराज हो गई है और भगवान को मना रहे हैं, भगवान उनको मना रहे हैं, वो नहीं मान रही है। ललिता प्रयास कर रही है, नहीं मान रही है। फिर भगवान प्रयास कर रहे हैं, वो भी नहीं मान रही है। भगवान यहां से आ रहे हैं उधर देख रही है, वहां से आ रहे हैं उधर देख रही है। बहुत प्रयास करने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपना मोर मुकुट उतार देते हैं और उसके चरणों में रखते हैं राधा रानी के, और उस पर बात भी नहीं मानती वो। अपने आंसुओं से राधा रानी के चरण धोते हैं वो, इतना रोते हैं मतलब विनती करते हुए, फिर भी नहीं मानती वो। फिर अपना शीश जो है ना वो राधा रानी के चरण में रखते हैं। तो ये जो है ना वो जयदेव जी को सहन नहीं होता है, मतलब अरे परम भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं ये, दिस इज कैसा है। जयदेव जैसे भक्त को भी वो ऐसा नहीं, राधा रानी पर गुस्सा नहीं आया उनको, लेकिन ऐसा ये व्याकुल लीला देखकर वो भी खुद व्याकुल हो गए और लिखना बंद कर दिया उन्होंने। बोले नहीं अभी मैं ये लिख नहीं सकता, दिस इज टू मच फॉर मी। तो पद्मावती को बोले कि मैं जा रहा हूँ गंगा जी स्नान करके आता हूँ, थोड़ा सा मैं, हम लोग को ऐसे वो फ्लैट के इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं है तो टेंशन आ जाता है, और बच्चा बहुत रो रहा है, रो रहा है कई घंटे और रो रहा है, तो हमको टेंशन आ जाता है कि हमारी गाड़ी पे ओले गिरे, सब कांच फूट गया, तो हमारा टेंशन आता है, इनको टेंशन क्यों आ रहा है, अभी मैं कैसे लिखूँ इसको, ये दिव्य लीला चल रही है इसको मैं समझूँ कैसे और लिखूँ कैसे, ये टेंशन आया। तो बोले दिमाग बहुत मेरा परेशान हो गया, मैं जरा गंगा जी में स्नान करके ठंडा होके आता हूँ, जरा फिर सोचता हूँ क्या लिखना है क्या लिखना नहीं है। और चले गए वो, तुरंत लौट के आए, बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना खिलाओ। पद्मावती ने खाना बनाया था, बैठ के अच्छी तरह से प्रेम से खिलाया, खाना खाया प्रेम से, अंदर चले गए। और वो जो आधा श्लोक छोड़ दिया था ना कि भगवान ने मोर मुकुट राधा रानी के पैर में रखा, उसको पूरा किया उन्होंने। जो पूरा करने में हिचकिचा रहे थे वो, उनको नहीं हो रहा था, उसका पूरा करना नहीं जब रहा था उनको, वो पूरा किया और बड़े खुश होकर चले गए। चले गए फिर लौट के आए तुरंत, बोले पद्मावती भूख लग रही है मुझे, खाना खिलाओ। तो पद्मावती कह रहे ऐसे क्या कर रहे हैं आप, अभी तो गए आते, आप स्नान करने गए थे, स्नान करके आए और बोला भूख लग रही है, मैंने खाना खिलाया पूरा आपको। बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो नदी में स्नान कर रहा हूँ, कब से चिंतन कर रहा हूँ मैं क्या करना है सोच रहा हूँ क्या करना है कैसे लिखना है, मैं तो नहीं आया, बहुत देर तक वहां बैठा रहा और चिंतन करता रहा। तो क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे कुछ तो बावड़े से क्यों हो रहे हैं आप, अरे आप अंदर भी गए और आपने अपना श्लोक भी पूरा किया। अच्छा तो अंदर जाके देखते हैं, मोतियों जैसे अक्षर में वो आधा श्लोक भगवान ने पूरा कर दिया था, मतलब जयदेव ने। तब जयदेव को समझा, अरे ये तो स्वयं कृष्ण भगवान माधव जी महाराज स्वयं आकर, उन्होंने मेरे रूप में आकर ये श्लोक पूरा किया है और बताया कि ये सच है, ये जो कुछ हुआ है ये कल्पना और कोई स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, मैं ऐसे करता हूँ बार बार, जब मेरी राधा रानी रूठती है तो मैं ये सब करते रहता हूँ। तब उनको समझ में आया कि मेरी पत्नी जो है उसको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, उसके हाथ से बनाया हुआ खाना खाया मेरे रूप में आकर। बोले पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान हो, अरे साक्षात माधव जी हमारे घर पे आए, श्री कृष्ण भगवान, और मेरा श्लोक भी पूरा कर दिया और तुम्हारे हाथ से भोजन किया, तुम कितनी भाग्यवान हो। उसके पैर छूने लगे, वो उनके पैर छूने लगे, दोनों बेहोश हो गए। भाव विभोर होकर। ऐसा अनुभव घर में आपके होगा, घर गृहस्थी पति पत्नी के लिए तो कैसा रहेगा सोचो आप। हाँ, इतने भाग्यवान पति पत्नी, इतने भगवान के सेवा में अपने जीवन को अर्पण कर चुके हैं, है ना, बहुत मच्छर काट रहे हैं। तो ये जयदेव जी फिर जगन्नाथपुरी में भी आए हैं, और जगन्नाथपुरी में जब आए ना तब उनका गीत गोविंद पूरा हो गया था। ये सुनो 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 सुनो, तो वो गीत गोविंद पूरा हो गया था तो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी को ना ये गीत गोविंद कपड़े में उसके श्लोक बुन कर वो कपड़ा जगन्नाथ जी को पहनना चाहिए, मतलब पूरी शाल ऐसी बड़ी उस पर सारे श्लोक एम्ब्रॉयडर करके रखे हैं, मतलब समझे, समझ सकते हैं आप। उनकी योजना थी ऐसा एक वस्त्र बनाया जाए जिस वस्त्र में पूरा गीत गोविंद लिखा हो, और वो वस्त्र जो है वो बनाया जाए किसी दर्जी से और वो वस्त्र जगन्नाथ जी को पहनाया जाए। माधव जी को स्वप्न में भगवान आए, सॉरी जयदेव जी के सपने माधव जी आए और बोले कि आप जगन्नाथपुरी जाओ। तो वो नवद्वीप में इतने आनंद में थे, इतने आनंद में थे, उनको लगा कि भगवान मुझे नवद्वीप से क्यों निकाल रहे हैं, तो ये तो परम धाम है जहां मैं पहुंच गया हूं। तो भगवान कहते हैं कि अरे मैं वहां पर जगन्नाथ के रूप में बैठा हूं और मुझे आपको वो सेवा लेनी है जगन्नाथ के रूप में, आपका गीत गोविंद सुनना है, इसलिए आप चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूं आपसे, आपको मेरे अलग धाम में सेवा दे रहा हूं और दोबारा लौट के आप नवद्वीप में आके ही अपना परम धाम प्राप्त करोगे। तो बड़े दुखी होकर एक तरह से पीछे बार बार मुड़ते हुए देखते देखते नवद्वीप छोड़ देते हैं, फिर जगन्नाथपुरी आते हैं और जगन्नाथ के धाम की लीला शुरू होती है। और जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनना बहुत पसंद है, ऐसे भगवान ने स्वयं बताया था ना, इसलिए वो गीत गोविंद को वो छापने का प्रयास करते हैं। तो दर्जी के पास जाते हैं वो काम करने वाले, तो दर्जी क्या बोलता है, जयदेव जी हम आपको जानते हैं कि आप जयदेव जी हो, मैं एक ही शर्त पर आपके कपड़े पर वो श्लोक लिखूंगा। क्या शर्त है वो, कि आप गीत गोविंद गाते रहेंगे और जब तक गाते रहेंगे तब तक मैं उसको सब लिखता रहूंगा, आप गाना बंद करते रहो बुनना बंद कर दूंगा। तो जयदेव जी गाने लगे। अभी जयदेव जी कोई किसी की बनाई हुई कविता नहीं गा रहे हैं, उन्होंने साक्षात लीलाओं का दर्शन किया है, वही लिखा है उन्होंने, और जब वो खुद गा रहे हैं तो दोबारा उनको दर्शन हो रहा है सब चीज का जो उन्होंने लिखा है, भगवान दर्शन दे रहे हैं, साक्षात्कार दृष्टांत दे रहे हैं उनको। तो बीच में ना गाते गाते क्या हुआ, वो बेहोश हो गए, बेहोश होके पड़े हुए हैं, लेकिन दर्जी भी अपना भाव विभोर होकर बना रहे उसको और ये बेहोश हो गए, फिर भी गीत गोविंद चालू है, वो भी बना रहा है, वो देखते रहे, वो भी मग्न को बना रहा है, वो भी, लेकिन वो बेहोश होके पड़े हैं। तो जब वो बीच में बेहोशी से होश में आते ना तो उनको बड़ा दुख होता है, अरे मैं तो बेहोश हो गया, मैं जो वादा किया था पूरा नहीं किया। तो वो कहने लगे उठकर, माफ करना कि मैंने आपका वादा पूरा नहीं किया, आप अभी बुन रहे ना उसको, बुनते रहो मैं गा रहा हूं। तो नहीं, आपने तो बाधा नहीं डाला उसके अंदर, आप तो गाते रहे, मैं तो सुनता रहा बना रहा। तो उनको पता था कि मैं बेहोश हो गया हूँ, बेहोश हो गया अभी होश में आया हूँ, उनको सब पता है, लेकिन वो भी मग्न है, वो अपना बुनते ही जा रहा है, वो मुड़ के देखा नहीं उसको। तब जयदेव जी को समझ में आया कि जगन्नाथ जी स्वयं जयदेव बनकर उधर गीत गोविंद गा रहे थे उस दर्जी के लिए। ऐसा है गीत गोविंद बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी को। तो मैंने क्या कहा आपको, वो बैंगन वाली जो लड़की है ना, वो अपने खेत में बैंगन तोड़ रही है, और अपने खेत में बैंगन तोड़ रही है कहाँ पर, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन बगीचे में। जगन्नाथ के मंदिर से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक आध किलोमीटर भी नहीं है, जहाँ जिस साइड मंदिर है ना उसी साइड पर वो बगीचा भी है, जगन्नाथ वल्लभ मठ भी है, आज भी वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है। उस समय तो जब चैतन्य महाप्रभु थे, जब बहुत सुंदर स्थान था वो, तो उधर वो बैंगन तोड़ रही है और बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही है। जगन्नाथ जी ना यहाँ पर व्याकुल हो गए कि कोई गीत गोविंद गा रहा है, तो अभी कैसे, वो पुजारी भोग लगा रहे हैं उनको, है ना, तो अभी कैसे जाएं। तो पुजारी भोग लगा कर पर्दा बंद कर देते हैं, तुरंत भाग जाते हैं उधर से, ऑल्टर से। हाँ, और उधर उस समय वो जंगल था, उस समय तो जंगल में कांटों में से भाग रहे, तो जगन्नाथ जी के वस्त्र पूरे फट रहे, इधर से उधर से फट रहे पूरे, और वो जाकर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बैठ जाते हैं, और वो लड़की अपना मग्न होकर बैंगन तोड़ रही है और गीत गोविंद गा रही है। भगवान बहुत देर सुनते हैं, सब सारे वस्त्र फटे हुए उनके, भगवान के वस्त्र हमारे जैसे वस्त्र नहीं होते ना, बहुत कीमती और बहुत सुंदर वस्त्र होते हैं, हीरे जवाहरात लगे होते हैं, मणि लगे होते हैं। उतने में उस घंटी बजी, किसकी घंटी बजी, भोग समाप्त हो गया और पर्दा खुलने वाला है, तो दोबारा भागे भगवान, वही कांटों में से भागे और कपड़े फट गए उनके। जैसे ही पर्दा खोलने का समय आया तो खड़े हो गया आके, जब पर्दा खोल के देखा तो सारे वस्त्र फटे हुए भगवान के, कुछ समझ में नहीं आया उनको, अरे इधर ही तो खड़े हैं, इधर ही भोग लगाया, पर्दा बंद है, कोई अंदर नहीं गया बाहर नहीं गया, ये कपड़े कौन फाड़े उसके, तो समझ में नहीं आया उनको, बहुत भ्रमित हो गए वो, ये क्या लीला है भगवान की। तो रात में भगवान स्वप्न में आए और बोले कि मैं तो लंच के समय जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में गया था गीत गोविंद सुनने के लिए, वो लड़की बहुत सुंदर गा रही थी, तो उनको पता चला कि अरे जगन्नाथ भगवान गए थे। तो फिर वो दूसरे दिन वो पुजारी लोग गार्डन में गए, वो लड़की को ढूंढ के निकाला, वो बोला तू एक काम कर, तू भी रोज इधर आके गाया कर ताकि ये भाग नहीं जाए तुम्हारे पीछे। तो वो उनको बोलते एकांत में सुनना है, ऐसा नहीं कि दिन के भीड़ भाड़ में सब पब्लिक आ रहा है उधर गीत गोविंद चल रहे हैं, मुझे रात में एकांत में सुनना है। तो आज भी जब तक वो जीवित थी तब तक वो खुद आकर रोज गाती थी, कभी रात को 11:30 बजे बड़ो श्रृंगार वेश, बड़ो श्रृंगार वेश में क्या है, फेटा जो है ना फेटा, वो उस वस्त्र का है जिसमें गीत गोविंद लिखा हुआ है, उसको गीत गोविंद खंडुआ कहते हैं, और वो गीत गोविंद खंडुआ जो है वो भगवान को फेटे की तरह लगाते हैं, और वो कहते हैं बड़े श्रृंगार वेश, उसमें और भी वो सारा सुंदर होता है वेश, तो बड़े श्रृंगार वेश में रात को 11:30 बजे में एकांत में ये लड़की जो है उसके जीवन के अंत तक रोज रात को गाती थी गीत गोविंद, और भगवान सुनते थे उसको। और जब वो गुजर गई तो आज भी उसके वंश के लोग जो हैं वो रोज रात को बैठकर वहां पर गीत गोविंद गाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में 11:30 बजे रात को, और कार्तिक महीने में उस समय चंदन लागे भी होती है, रात को भगवान को चंदन लगाते हैं सर पे और फेटा पहनाते हैं, और वो पीछे बैठकर वो उसी घर जो लड़की थी उसके वंश के जो लोग हैं वो बैठकर आज भी गीत गोविंद गाते हैं। सुंदर है ना भगवान की कथा, कितनी सुंदर भगवान की कथा है, ऐसे भगवान हैं। तो हम लोगों को ये कथा क्यों सुननी चाहिए कि हमारी भी श्रद्धा बढ़ती है भगवान की, भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान कोई ऐसे रिंग मास्टर नहीं है, रिंग मास्टर उनके लिए है जो राक्षस है, उनके लिए रिंग मास्टर की तरह काम करते हो, चाबुक खींचते हैं तो खड़ा कर देते हैं उनको, लेकिन जो प्रेम करते हैं उनसे लिए प्रेम से आते हैं, प्रेम से लीला करते हैं। अभी वो बांके बिहारी थे ना हमारे, अभी अभी की बात है, एक दिन रात को बांके बिहारी के पुजारी लोग हैं ना, वो देखो बांके बिहारी कैसे हैं, बालक हैं, बालक बालक कैसे हैं, कभी भी उठेगा तो मिठाई खाएगा, बिस्कुट खाएगा, क्या जो चाहिए, अभी तो कुछ वेफर खाते हैं, कुछ चीज़ लिंक खाते हैं, क्या गंदा गंदा खाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में वो संदेश खाते थे, मिठाई खाते थे, लड्डू खाते थे, गाय के दूध का बना हुआ माल खाते थे। तो वो रात को आज भी बाल भाव में सभी मंदिरों में मिठाइयों का भोग लगता है रात को, और रात को वही रखते हैं, जैसे नंदगांव में जाएंगे ना आप तो नंदगांव में ना उधर बंटा भोग लगता है, बंटा भोग बड़ा बड़ा लड्डू होता है ना, बड़ा बड़ा इतना स्वादिष्ट होता है वो, क्या कहें आपको, इतना स्वादिष्ट होता है, और वो बहुत नंबर में बना के रखते हैं, और वो बहुत नंबर में बना के रखे वो रात को रखते हैं उसको, और कभी भी वो भगवान को दिल करेगा तो भगवान खाते हैं उसको। वैसे एक दिन रात को बांके बिहारी को, सुन रहे हैं आप, एक दिन रात को पुजारी वो उस मिठाई रखना भूल गए, दूध रखना भी भूल गए, तो रात को बांके बिहारी जी ना बालक बनकर ब्रीच रात को बांके बिहारी के दुकान, वो जो है ना बाहर बहुत लाइन दुकान है ना, बहुत बहुत सारे दुकान है, उसमें एक बूढ़ा भक्त था, बहुत प्रेमी भक्त था बांके बिहारी जी का, दुकानदार भी था, दूध भी बेचता था उधर, तो वो अकेला रात को जग कर कुछ साफ सफाई कर रहा है अपना, तो बालक आता है उधर, बोलता है बालक, बोलता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे मिठाई हो दो, मुझे दूध पिलाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, गर्म किया दूध और उसको मिठाई विठाई खिलाई फर्स्ट क्लास। और बोले मूल्य दो अभी। तो कहते मूल्य तो है नहीं, मैं तो भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ये कंगन पहना हुआ मैया ने पहनाया है, उसको मैं आपको देता हूँ और मेरे मैया आके फिर आपको पैसा देगी और कंगन ले लेगी आपसे। ऐसे बोल के बालक चला जाता है। अगले दिन जब पुजारी आते हैं तो देखते हैं कि भगवान के हाथ का श्रृंगार में एक कंगन गायब है। किसने चोरी किया, किसने चोरी किया, पुजारी ने चोरी किया, सबका झड़ती लेते हैं, कंप्लेंट होती है पुलिस की, सब कुछ होता है। फिर वो पूरा शहर में ढूंढते हैं, ढूंढते 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 ये दुकान में आ जाते हैं, ऐसे सबको इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये बुड्ढा बोलता है हाँ एक लड़का रात को आया था, दूध पिया उसने और ये कंगन दे के गया है। कंगन देखते तो मुझे साक्षात ठाकुर जी का कंगन, इतने बंद दरवाजे में कोई घुस सकता नहीं है पुजारियों के अलावा, ये तुम्हारे पास कैसे आया, तुमने चोरी किया इसको? बोले नहीं बाबा, रात को मैं कल बैठा था तो एक लड़का आया, उन्होंने बोला कि आज मेरे वेदी पर मिठाई और दूध नहीं रखा इसलिए मैं भूखा हूँ। तब उनको चमका कि हम कल रात को वो मिठाई और दूध रखना भूल गए थे। तब उनको विश्वास हुआ, अरे भगवान है साक्षात, वो पत्थर नहीं है, वो तुम्हारे भोग लेते हैं जो तुम चढ़ाते हो, प्रेम से चढ़ाओ तो लेते हो, तो नहीं रखे तो फिर जाते हैं भागने के लिए किसी के साथ। वो सेवा कुंज मालूम है आपको, सेवा कुंज में भी ऐसी लीला है। 7:30 बजे आरती होती है और वहां पर श्रद्धा लोगों की ऐसी है कि रात भर भगवान वहां पर रास लीला करते हैं सेवा कुंज में नित्य रूप में। इतने बंदर होते हैं वहां पर, लेकिन 7 बज गए ना सारा कीड़ा मकड़ा भी बाहर निकल जाता है वहां से, कोई रहता नहीं उसके अंदर। कोई प्रवेश भी करता है ना छुप छुप के, चलो रास लीला देखेंगे भगवान की, तो या तो वो अंधा हो जाता है, या तो उसको अर्धांग वायु का झटका आता है पैरालिसिस का, या तो मर जाता है, वो विकृत हो जाता है, विकृत ऐसी जगह है वो। तो उधर रात को इस भाव से कि भगवान रात को रास लीला रचाएंगे तो उनको प्यास लगेगी, उनको भूख लगेगी, उनको सब कुछ लगेगा, गोपियों को, राधा रानी को, तो वो सब भोजन वहां पर रखते हैं, मिठाई दूध मलाई रबड़ी बासुंदी सब बहुत प्रकार की मिठाई बहुत ग्लासों में रखे रखते हैं। सुबह आज जब 4 बजे मंगला होती है तो सब लोग दर्शन करने जाते हैं, तो सब जितने भी आइटम रखे हैं ना वो ऐसे आधे खाए हुए टूटे हुए, आधा ग्लास दूध पिया हुआ, वो सब प्रसाद सबको बांट देते हैं। अभी आप कहेंगे क्या बकवास है, वो चूहा खाता होगा, ऐसे आप सोचेंगे है ना, सोचते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को क्या प्रॉब्लम है, आप जो चाहे सोचते रहो, बंदर आते होंगे, चूहा आता होगा, कॉकरोच आता होगा, लेकिन जिनके लिए श्रद्धा है उनके लिए भगवान आकर वहां पर खा रहे रात को, पूरा ऐसा बंद है पूरा, वो उधर कुछ दिखता नहीं किसी को, ओपन वन है वो, लेकिन कोई दर्शन नहीं करता है उसके अंदर, बहुत भयंकर चीज है वो। और सुबह 4 बजे पहुंचते हैं, वो महाप्रसाद ले लेते हैं, उसका दर्शन भी करते हैं, ऐसे लड्डू टूटे हुए आधा खा के रखा हुआ है, आधा पानी पिया हुआ है लड्डू, तो ऐसे भगवान है। तो हमारी क्या विनती है आपको कि भगवान को आप मूर्ति मत समझिए, भगवान को पत्थर मत समझिए, भगवान साक्षात हैं। और प्रभुपाद जी का एक मैंने प्रवचन सुना सवेरे स्नान करते हुए, उसमें एक सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताई कि विग्रह क्या है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है ना, दृष्टि आपकी हमारी, वो दृष्टि कैसी है, लाइट होगी तो हमको दिखता है, पूरा गुड़ूप अंधेरा हो जाएगा तो हमको कुछ नहीं दिखता है, फिर लाइट होगी भी तो ये दीवार बीच में है तो दीवार के पीछे क्या चल रहा है हमको दिखता नहीं है। अमेरिका में आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे सुना ही नहीं पड़ता है ना, ऐसा है ना, हमारी दृष्टि जो है ना, दृष्टि जो है वो सीमित है हमारी, ऐसे आंखों के सामने उंगली पकड़ेंगे तो पूरा सूरज को भी नाप लेंगे आप, बोलेंगे मेरी उंगली जो है सूरज के साइज की है, ऐसा पकड़ेंगे तो सूरज भी नाप लेंगे आप, चांद भी नाप लेंगे, बड़ी बिल्डिंग भी नाप लेंगे, ये हमारी दृष्टि की क्या कहते हैं उसको, दोष है दृष्टि का, और सीमित दृष्टि होने का वो प्रमाण है। तो कहते हैं कि भगवान दिव्य हैं, हमारी इंद्रियां भौतिक है, भौतिक इंद्रियों से जो दोष से पूर्ण है उससे दिव्य वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता है, सुन रहे हैं आप, ये आपके डीटी वर्षे में काम आएगा, ध्यान से सुनना। भौतिक दुनिया में भौतिक दोषपूर्ण इंद्रियों से हम दिव्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब हमारे भौतिक इंद्रियां भगवान की सेवा कर करके शुद्ध हो जाएंगे तो वो शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन भगवान की इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी शुद्ध तो नहीं हुए हैं। फिर भी भगवान दयालु है और हम आपको दर्शन देना चाहते हैं, तो हमारे दृष्टि के दोषपूर्ण स्थिति के सीमा में अंदर आ जाते हो विग्रह बनकर। तो विग्रह को, विग्रह क्या है, हमारे दोषपूर्ण इंद्रियों की सीमा के अंदर वो आते हैं विग्रह बनकर हमको दिखने के लिए। वो दिव्य है, बहुत पूरी दिव्य वस्तु है भगवान, लेकिन हम दिव्य नहीं है, तो हमारे दिव्य नहीं होने की अवस्था में भी उनका दर्शन हमको होना चाहिए। इसलिए भगवान हमारे सीमा के दायरे में आ जाते हैं। ही कम्स इन द लिमिट्स ऑफ योर फॉल्टी कंडीशन टू गिव दर्शन टू यू, ये उनकी कृपा है। लेकिन वो जब आते हैं, एक धातु के मूर्ति में आते हैं, एक पत्थर की मूर्ति में आते हैं, एक पेंटिंग में भी आ जाते हैं, वो कई प्रकार की चीज़ों में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो पेंटिंग में आ गए, पत्थर में आ गए, मूर्ति में आ गए, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी में आ गए, तो वो लकड़ी पत्थर मूर्ति नहीं बन जाते हैं, वो तो साक्षात स्वयं भगवान ही है। वो अपनी अनंत दिव्य अनाकलनीय अचिंत्य शक्ति से वो हमारे दोषपूर्ण दृष्टि के सीमा में प्रवेश करते हैं, फिर भी वो भौतिक नहीं बन जाते हैं, वो तो दिव्य ही रहते हैं। हम भौतिक है, हमारी भौतिक दृष्टि है, हमारी भौतिक दृष्टि के दायरे में हमको दिखना चाहिए, वो उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन है वो पूरी तरह दिव्य। जब हमारी भावना होती है ना, तो आप लोगों को भी कई अनुभव ऐसे आए होंगे, मैं कई भक्तों के घर पे गया हूँ, मैं भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा थे उनके घर पे, तो उन्होंने कहा है प्रभु जी हमारे जगन्नाथ जी बहुत चमत्कारी है। मैं रात को पानी रखने को भूल गई थी, तो सपनों में आके जगाया उन्होंने मुझे, बताया पानी पिलाओ प्यास लग रही है। फिर मैं बक्के उठी, देखा तो पानी रखा नहीं था, तो मैंने पानी रखा। ऐसे घर में भी चमत्कार होता है, अगर आप प्रेम से सेवा करोगे तो आपको रिस्पॉन्स देंगे वो। अभी एक कहानी मुझे याद आ रही है मेरी खुद की, बताता हूँ आपको। वो मैं ऋषिकेश में फुल टाइम था उस समय 1988 में, तो गौर निताय की मूर्ति थी वहां पर, उसकी मैं रोज सेवा करता था, रोज श्रृंगार सेवा करता था उनकी। 5:15 को शुरू करता था, 7 बजे तक उनका स्नान वान करके श्रृंगार करता था, और कई महीने तक मैं वो सेवा की प्रेम से एकदम। वहां पर ऐसा नियम था कि लास्ट मंदिर में आपको रिपोर्ट करना है तो वो सुबह 3 बजे, 3:01 आप रिपोर्ट किया तो आपको लेट मार्क मिलेगा, उस दिन प्रसाद नहीं मिलेगा। तो लोग लेटेस्ट जो है 2:30 उठते थे, और कुछ लोग 1:30 उठते थे, और सब भक्तों की आश्रम की सब भक्तों की 16 माला जो है वो मंगल आरती के पहले समाप्त होती थी। 16 माला पूरी करके वो मंगला में आते थे 4:30 को, फिर 5:15 तक मंगल आरती चलती थी। 5:15 के बाद सब लोग अपने अपनी सेवा करने के लिए चले जाते थे, कोई गौशाला गया, कोई किचन में गया, इधर गया उधर गया, और एक पुजारी है मेरे जैसा, वो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर वो लौट के आएंगे, 7 बजे दर्शन करेंगे, ब्रेकफास्ट पाएंगे, फिर आप वापस काम पे चले जाएंगे, और 8:00 शाम को बज गए, सब शांति, ऐसा वातावरण था उस समय। तो मैं रोज सेवा करता था अकेले, कोई उधर था ही नहीं, अकेले ही सेवा करता था। तो कई दिन के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्या मेरी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं क्या, कैसा मालूम पड़ेगा, कुछ होना चाहिए ऐसा मालूम पड़ेगी भाई मेरी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन फिर दूसरे दिन भगवान से ही बोला ड्रेसिंग करते समय कि हे गौरनिताई, अगर आप मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं तो आज प्रसादम ब्रेकफास्ट के समय पर कोई मुझे बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया आज, हाँ आप बोलते ना बहुत बढ़िया श्रृंगार हो गया है, बहुत बढ़िया दर्शन है आज, ऐसा कोई मुझे बोलेगा भक्तों में से तो मैं मान जाऊंगा कि आप मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। उस दिन ब्रेकफास्ट सर्विस की भी सेवा मेरी थी टर्न बाय टर्न, तो मैं सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया, सबने ब्रेकफास्ट खाया, अच्छा ब्रेकफास्ट है बोला, और सब चले गए, किसने भी नहीं बोला कि दर्शन बहुत अच्छा था, भगवान का दर्शन बहुत सुंदर था आज। लास्ट में एक भक्त आया, देर से आया, वो भाग के मंदिर गया, दर्शन किया और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया, टाइम खत्म हो रहा था, भाग के आया और ब्रेकफास्ट करते समय मुझे बोला प्रभु जी बहुत सुंदर दर्शन है आज का। मुझे बहुत आनंद हो गया कि गौर निताय ने मुझे रिस्पांस दिया, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है लक बाय चांस किसी ने बोला होगा ऐसे ही मिस्टेक से। बोले कल एक बार बोलेंगे ना कोई तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा। तो अगले दिन फिर मैंने श्रृंगार किया भगवान का, और फिर उस दिन मैं बैठ गया प्रसाद लेने के लिए, कोई और सर्विस कर रहा था, तो वैसे ही सब लोग उठ गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन स्वामी जी जो थे वहाँ के वो बैठ कर प्रसाद पा रहे थे, और एंड में बोलते मुझे स्वरूप आज श्रृंगार बहुत बढ़िया हो गया है। उसके बाद मैंने कभी भगवान को बोला नहीं क्या आप स्वीकार करते हो क्या मेरी सेवा, ये पूरा यकीन हो गया उसके बाद में। भगवान को बार बार परेशान नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है वो। श्रद्धा नहीं दिखाना बार बार, और बार बार उनको मजबूर करना प्रूफ करने के लिए कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अरे कितनी बार बताया, प्रवचन में बताया, शास्त्र में बताया, संतों के रूप में बताया, उनके कहानी में बताया, कितनी बार बताना चाहिए आपको कि मैं हूँ, डोंट वरी मैं हूँ वहाँ पर। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजनंदन, कोई प्रतिमा नहीं है, वो आपके लिए आए हैं, आपके दोषपूर्ण दृष्टि के सीमा, दोषपूर्ण सीमा के अंदर वो दर्शन देने के लिए मूर्ति बनकर आए आपके लिए, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मेटल भी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। तो श्रद्धा रखिए, उनकी सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ लो, दिल भर के पूछ लो। यस देखते हैं अभी भक्तों का हृदय संतुष्ट करके फिर निकलते हैं। बोलिए। यस साधना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम जप कीजिए मन लगाकर, चार नियम का पालन कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, भागवत पठन कीजिए, उसको पढ़िए अच्छी तरह से, मंदिर में सेवा करने के लिए आइए उसमें आलस्य मत कीजिए, अपनी अपनी सेवा दिल से कीजिए, और भक्तों का अपराध मत कीजिए। इतना करेंगे अपनी साधना अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे बाधा क्या है साधना करने में? भगवान के भक्तों का अपराध, ये सबसे बड़ी बाधा है। रूपा जी बताते थे, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चैंट हरे कृष्णा एंड डू नॉट ऑफेंड माई डिवोटीज, भगवान के नाम जप करो और मेरे भक्तों का अपराध मत करो। और आगे बताया मेरे भक्तों की सेवा करो, एक है उनका अपराध मत करो, एक है उनकी सेवा करो, प्रसन्न करो उनको। भगवान का नाम जप करके भगवान के भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न करेंगे तो अपने आप आपकी साधना जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। सब जो भी कुछ चाहिए ना हमको, रुचि आसक्ति निष्ठा प्रेम भाव सब प्रकट हो जाएगा, और इसी जीवन में प्रकट होगा, ये नहीं कि अगले जन्म में अगला हिस्सा प्रकट होगा, पार्ट टू ऐसा नहीं है। आज करोगे तो आज आपको वो भाव सब प्रकट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो दोषपूर्ण मन है ना वो ऐसा अपराध करने के लिए हमेशा प्रवृत्त रहता है, उत्सुक रहता है, कब भक्त का दोष देखूं कब उसको पीटूं, ये हमारा मूड रहता है। लेकिन ऐसा रहेगा तो हमको रोज पीटना चाहिए लोगों से, है ना? अगर हमको भक्तों के अंदर का दोष दिखते हैं और उनको पीटने का दिल करता है तो हमको तो रोज ही निरंतर पीटते रहना चाहिए लोगों से, क्योंकि हमारे अंदर इतने दोष है वो कौन देखेगा? हमारी आंखों से हमारे पीठ दिखते हैं क्या? हम लोग हमारी पीठ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कितना भी आईना एंगल में रखो पीछे से आप, आपकी पूरी पीठ आप नहीं देख सकते। उसी तरह से हमारे अंदर के दोष आपको दूसरे लोग ही बताएंगे और तुमको दूसरों के दोष नजर आएंगे। तो वो जब दोष बताते हैं कोई तभी बुरा मत मानना और सुधर जाना, और दूसरों को बताते समय अगर आपका अधिकार है तो ही बताना उनका दोष, सबको जाके बताना मत जिसको आपको जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। और बेकार में जाकर किसी की निंदा मत करना, केवल ईर्ष्या को प्रकट करने के लिए या हमारे अंदर जो गुस्सा है उसके प्रति वो प्रकट करने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन साधना को अगर बढ़ाना है तो नियम होना चाहिए। नियम के बिना साधना मजबूत नहीं हो सकती। आज सुबह जप किया, कल शाम को किया, एकादशी को 80 माला किया और बाकी दिन 16 माला के लिए मुश्किल हो गया, कभी ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया, कभी शाम को भी नहीं हो रहा है पूरा, ये नियम नहीं हो सकता है। नियम मतलब जो लगातार हर समय उसी समय चलते रहता है। कभी एक आध बार कुछ हो गया ठीक है, देर से आए, यात्रा करके आए, बाहर से थक के आए, एक आध दिन टाइम टेबल मिस हो गया, लेकिन बाकी समय पर नियमित रूप से उसका उस समय पर होता है। कुछ भी हो जाए ठीक समय पर जप होता है, क्योंकि ठीक समय पर जब हम जप करते ना तो मन को भी उस समय के लिए आदत बन जाती है कि ये समय जप करने का है। अगर आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट करने का आपका टाइमिंग है तो शरीर भी आपको 8 बजे बराबर भूख लेके आएगा, शरीर बराबर 8 बजे आपको भूख देगा और भूख से आप खाने लगेंगे। कभी 8 बजे खाया, 10 बजे खाया, कभी 9 बजे खाया, तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या भी खाना है, भूख कभी दिलाऊं इसको। इसलिए कहते हैं समय पर खाना चाहिए, फिक्स टाइम पे, इधर थोड़ा 15 मिनट हो गए लेकिन फिक्स टाइम पे खाना चाहिए ताकि शरीर भी उसका फिक्स टाइम पे अपना काम करते रहे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अगर उसका समय पर खाना खिलाना जरूरी है, यहाँ तक कि निद्रा रोगियों को निद्रा के डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको निद्रा का रोग है, निद्रा नहीं आती है, फिर भी आप उसी समय पर बिस्तर पे जाकर लेट जाना, 9 बजे अंधेरा करके सबको टीवी बंद करके मोबाइल बंद करके लेट जाना, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा करके आधा घंटे में आपको नींद आने लगेगी, फिर आप शरीर को भी आदत लगेगी कि 9 बजे ही आदमी को सोना है, इसको नींद देना है। अगर शरीर के लिए इतना समय की पाबंदी है तो दिव्य भगवान को प्राप्त करने के लिए नियम की पाबंदी कैसे नहीं है? वही मन है, वो बोल रहे हैं मोबाइल खोल के व्हाट्सएप देख लो, और आप बोल रहे नहीं जब करने का समय है, बंद है मोबाइल अभी। तो फिर मन को भी धीरे धीरे आदत लगती है कि ये जो 6 से 8 का समय है या 5:15 से 8 का समय है, ये जप का समय है, इसमें जप का ही मन बनेगा आपका। तो मन भी एक यंत्र है, शरीर भी एक यंत्र है, और सब यंत्र अपने अपने टाइम पे काम करते हैं। समय पर सर्विसिंग करना पड़ता है गाड़ी का, समय पे हजमा हो जाता है। 12 बजे आप आके पनीर का सब्जी खा नहीं खा सकते डिनर में, तो हजम कैसे होगा? वो उसका समय है, कभी खाने का है, कभी नहीं खाने का है। रात में करेला नहीं खा सकते, वो आपको नुकसान करेगा। दही नहीं खा सकते, नुकसान करेगा। वो नियम तोड़ नहीं सकते आप प्रकृति का। वैसे ही आत्मा के लिए भगवान ने ब्रह्मा मुहूर्त का समय दिया है, तो समय बैठो आप और जब करो, तो मन को भी उसकी आदत लग जाएगी। और 9 बजे सोने की आदत करो, 9 बजे नींद आ जाएगी आपको। ऐसे और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? आप भी राधा नाथ से पूछना कि आप मेरी सेवा स्वीकार करते हो कि नहीं, तो बताएंगे आपको, कुछ कुछ आइडिया देंगे आपको, समझाएंगे आपको। प्रेम से की हुई सेवा भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं, बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं है। वो प्रत्यक्ष है, वो आपको बताएंगे मैं हूं यहां पर, डोंट वरी। मेरी प्रतिष्ठापना नहीं भी हुई है फिर भी मैं हूं, क्योंकि वो प्रतिष्ठापना से ही नहीं आते, वो उससे भी आते हैं, लेकिन प्रतिष्ठापना से अलावा आपके भाव के वजह से भी आते हो, अच्छा लगता है उनको, भाव के लिए आते हैं। बाकी आपका वो करण जी और वो पकौड़ा खाने के लिए नहीं आते हो, अच्छा लगता है उनको, आपने बनाया प्रेम से, वो प्रेम को लेने के लिए आते हैं, ये उनकी स्थिति है। वो भेदभाव नहीं करते, वो ये ब्राह्मण है, ये वंजारी है, सब भेदभाव नहीं करते, सबका ले लेते हैं, प्रेम से देखें सबका ले लेते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी एक औरत के घर पे जाकर ना खिचड़ी खाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही बहुत खिचड़ी खाया उन्होंने, और वहां पर घंटी बजी भोग वाली, तो ऐसे ही आ गए उधर, तो देखते हैं कि अरे उनके हाथ में खिचड़ी लगी है, उनके मुंह पे खिचड़ी लगी है, उधर कोई खिचड़ी है ही नहीं भोग लगाई हुई। तो बड़े अच्छे भी तो जाते पुजारी, तो रात को पुजारी के सपने में आते बताते हैं कि मैं ना वो माता जी के पास रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे खिचड़ी उसकी, और आज क्या हुआ ना, वो मैं हाथ और मुंह पोछना ही मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे, तुरंत आके खड़ा हो गया, इसलिए वो ऐसा हो गया। तो वो बुढ़िया को जो वो मुसलमान थी उसको लेके आए, वो उसके हाथ से रोज खिचड़ी भगवान को खिलाया, इसलिए आज भी खिचड़ी चल रही है उधर जगन्नाथ जी के अंदर। उसके कुटिया में गए थे, उसको भगा दिया था लोगों ने, चल हटो यहाँ से तुम शूद्र हो मुसलमान हो। तो गांव की सीमा पर गए, उसके घर पे खिचड़ी खाया भगवान ने। तो भगवान भाव के भूखे। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। प्रश्न क्या है आपका? इनका प्रश्न है कि सब करने वाले भगवान है, फिर भी हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, हम निमित्त है फिर भी हम सोचते हैं हम करने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? आप ना अपने घर पे हर दीवार पे लिख के रखिए चारों तरफ कि भगवान करने वाला है, मैं निमित्त मात्र हूँ। या तो किसी को बोल के रखिए कि जैसे आपको मिले बोले, आपको बोले सनातन चैतन्य प्रभु सब भगवान करने वाले हैं, आप निमित्त हो। तो या तो वो लोगों से याद करवा दीजिए, या तो चारों तरफ घर में लिख दीजिए कि भगवान करने वाले हैं और मैं निमित्त हूँ। क्या जरूरी है अपने को? जब हमको वो अहंकार होता है कि मैं करने वाला हूँ, तब कोई याद करने वाला चाहिए, अरे भैया तुम नहीं करने वाले हो, भगवान ही करने वाले हैं। तो आप सिंसियर हो तुरंत आप मान जाओगे। जैसे आपके मन में वो गर्व होता है और ऐसे वो ईगो बढ़ता है ना कि मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कितना किया है, ऐसा भाव उत्पन्न होते ही कोई बताएगा प्रभु, आपने उसको बोला है बताने के लिए, प्रभु आपने कहा था ना रोज 11 बजे मुझे बोलना है ये बात, 11 बज रहे हैं, आप नहीं करने हो, भगवान ही करने वाले हैं। ऐसे बोल के रखो, संडे को किसी को टाइम देकर रखो 12 बजे 10 बजे, और शनिवार को किसी टाइम को देखा रखो, बोला आपका ये काम है मुझे बताने का कि मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान करने वाले हैं। तो आपको ऐसा आनंद आएगा ना, जब आपके मन में वो फीवर आएगा ना, फीवर ऐसा मैं करने वाला हूँ, उस समय आपको वो रब पर 5 बजे बोलेगा आपको, आप करने वाले नहीं हो, भगवान करने वाले। तो आप बोलेंगे अच्छा हुआ मैंने अच्छा योजना बना के रखा है, बार बार मुझे लोग बचा रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यस ऐसा आपको लगता है? जब हम छोटे से मंदिर में थे तभी बहुत प्रेम का अनुभव होता था, जब थोड़ा बड़ा विस्तार हो गया तो लोगों को महसूस हो रहा है कि अभी प्रेम कम लगता है थोड़ा सा, क्या करें उसके लिए? जो लोगों ने छोटी जगह रहकर वो प्रेम का अनुभव किया है, उन्हीं का ये उत्तरदायित्व है दूसरों को अनुभव देने का। आप लोगों ने अनुभव किया ना छोटे समुदाय में प्रेम का, तो जिन जिन लोगों ने छोटे समुदाय में जितने लोग तो उसमें थे, वो सबका उत्तरदायित्व है कि दूसरे लोगों को वो अनुभव दे दें। जब 50 लोग थे तो आपको वो अनुभव था, अब 500 लोग हो गए तो वो 50ों का कर्तव्य है कि आगे 50-50 लोगों को वो खुद ही प्रेम दे दें। आपको भी किसी ने प्रेम दिया था ना उस समय जब पहले आए थे, तो जैसे आपको किसी ने अपने आप दे दिया, आपने किसी को दे दिया, अभी उन लोगों को भी और किसी को देना है। और जो नया व्यक्ति आज 1,201 नंबर का व्यक्ति जो आज प्रवेश कर रहा है मंदिर में, उसको भी उस वही प्रेम का अनुभव होना चाहिए। वो मंदिर बड़ा होने से और विस्तार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए मेंटी सिस्टम, काउंसलर सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम बना के रखा है, ताकि छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को उसी प्रेम का अनुभव मिले जो शुरुआत में लोगों को मिला था। तो जितने मेंटर हैं, जितने मेंटीज हैं, जितने काउंसलर हैं, जितने पुराने लोग हैं, ये सब लोगों का जिम्मेदारी है। ये मत बोलना कि आजकल प्रेम का अनुभव नहीं होता है, आपको देना है लोगों को, आपने लिया था ना पहले, इसलिए आपको लग रहा है आज नहीं मिल रहा है, मतलब आप उसके लाभार्थी है ना, रेसिपियंट है ना, आप ना हो ना, तो आप दो लोगों को, लोग नहीं दे रहे बैठकर रोते मत बैठो, आप दो, जा जा के दो, वही प्रेम से गले लगाओ लोगों को, वही प्रेम से उनकी खबर ले लो, विचार पूछ करो, उनकी देखभाल खेम कुशल पूछो, उनका उनके दुख सुख में साथ दो, जाके रात में बीच में कभी समय के अनुसार छोड़ के जाओ, सब त्याग करके उनकी देखभाल करो। क्योंकि प्रेम जो है ना वो मिलने तक वेट नहीं करना चाहिए, वो देना चाहिए, फिर अपने आप मिल जाता है। वो प्रेम देने से प्राप्त होता है। आप बैठेंगे मुझे पहले प्रेम दो फिर मैं प्रेम दूंगा, तो कभी नहीं मिलेगा, आप ऐसे सूखे रह जाओगे। तो इसीलिए वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं, और एक व्यक्ति को मुमकिन नहीं, राधानाथ महाराज को मुमकिन नहीं कि आपको सबको आके हर एक व्यक्ति को प्रेम देने का अनुभव कर सके वो। लेकिन उनके तरफ से या उनके भक्तों की तरफ से, उनके भक्तों की तरफ से जो प्रेम आपको मिला है वो आपको लोगों को देना चाहिए। और वो प्रेम की धरोहर यही हमारा संप्रदाय है कि वो प्रेम से ही हम लोग सब लोग यहाँ पर है ना, कहीं ना कहीं हमको प्रेम मिला था इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठते इधर हम, कई बार लगता है छोड़ के चले जाए, लेकिन जो प्रेम मिला है उसकी याद करके फिर वापस रुक जाते हैं हम लोग। बाकी सब तो ठीक है, मंदिर बना, पहले मंदिर नहीं था, पहले उधर था छोटा सा, इधर बड़ा हो गया, आगे मूर्ति भी आ जाएगी, ब्राह्मण भी आ जाएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम भी होगा, बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन सब लोग आए किसके लिए हैं, सबको किसी ने प्रेम दिया है, उससे प्रेरणा लेकर फिर आपने जप किया है, तो भगवान से किसको प्रेम है, भक्तों ने दिया इसलिए भगवान पर कुछ प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अल्टीमेटली वो मेरी जिम्मेदारी है, यही भाव होना चाहिए। वो क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करती, ये प्रश्न में कोई मतलब नहीं है, करना हमको ही है। और कोई प्रश्न है? क्या नहीं फल होता है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो 16 माला करते हैं और 4 नियम पालन करने में उनको नहीं समर्थ हैं, वो डीटी को नहीं हाथ लगा सकते। डीटी वर्शिप करने के लिए व्यक्ति को सब नियम अच्छी तरह पालन करने चाहिए। भगवान कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और 4 नियम बहुत जरूरी है, 4 नियम करने से ही आदमी का आत्मा शुद्ध हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। कहते हैं 4 नियम पालन करने से आदमी जानवर से इंसान बन जाता है, और इंसान बनने के बाद भक्त बन जाता है, तो उसके बिना कैसे सेवा करेगी। वैसे ही आपको बता दूं एक बात, आपको अच्छी लगेगी बात, कलयुग में वैसे भगवान के विग्रहों की पूजा करने का योग्य कोई है ही नहीं, ब्राह्मण दीक्षित भक्त भी नहीं है, क्योंकि विग्रहों की पूजा करने का धर्म जो पिछला युग धर्म था, पिछला युग था, वो द्वापर युग का धर्म है, वो अर्च विग्रह पद्धति, वो युग धर्म पिछला धर्म था, और वो युग धर्म जो भगवान की सेवा करते थे ना, उसका 1% भी आज हम फॉलो नहीं कर सकते, इतनी भाव से सेवा हुआ करती थी उस समय। आज जो हो रहा है ना, राधा कृष्ण का विग्रह आपके पास है, लेकिन सारी पूजा अर्चा लक्ष्मी नारायण की होती है, जो भी सारे नियम है ना वो लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्य वाले भाव में उसकी पूजा होती है। वो ऐसे कोई, आप ऐसा करते हो क्या, आपने करण जी बनाया तो उसको मुंह से आके खिलाते हो क्या, है ना, थाली में रखते हो, घंटे बजाते हो, मंत्र करते हो, बंद करके चले जाते हो, वैसे भाव से लोग खिलाते थे उनको, तो वो तो बात ही छोड़ दो आप, उसमें डिस्काउंट डिस्काउंट लेके हम लोग सब लोग अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो हम लोग भी समझना चाहिए कि हम लोग भी योग्य नहीं उसके, लेकिन कुछ नियम से हम लोग कर सकते हैं, गुरु जी की इच्छा से कर सकते हैं, उसमें भी और डिस्काउंट लेना नहीं चाहिए। तो जब सब लोग आप ब्राह्मण दीक्षित हो जाओगे, कुछ नंबर हो जाएगा उसका, तो भगवान की प्रतिष्ठापना भी होगी, फिर आप जा सकते हैं उसके अंदर। और तभी आप जैसे कोई लोग आके बोलेंगे कि मैं 16 माला करती हूँ, 4 नियम पालन करती हूँ, मेरा 2nd दीक्षा नहीं हुआ है, तभी आप क्या बोलेंगे उसको, बोले ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। तो ऐसे नियम आचार्य लोगों ने बनाए हुए हैं, उसको पालन करना जरूरी है। एक भक्तों में रोग होता है, उसका नाम है एंटाइटलमेंट, मतलब जहां पर मेरा हक नहीं है वहां जाकर हक दिखाना। समझो ये प्रोग्राम ऐसा है कि समझो 1990 के पहले जो भक्त थे उनका एक मीटिंग बुलाया है, और उसके पहले बॉम्बे के जो सीनियर डिवोटीज हैं वो आकर उनको मिलने वाला है समझो, और वो बंद दरवाजे वाला मीटिंग होने वाला है ऐसा समझो आता है। तो उसमें 91-92 में आने वाले आए हुए भक्त भी कोशिश कर रहे कि मुझे भी एंट्री मिल जाए उसके अंदर। वो एक रोग है, जहाँ पर मुझे जाने का हक नहीं है वहाँ पर घुसने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जहाँ पर डीटी वर्शिप के लिए अंदर मुझे जाने का योग्यता नहीं है वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करके घुसने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 1,00,000 डोनेशन दिया है, मैंने वो मूर्ति का स्पॉन्सरशिप किया है, मैं जन्माष्टमी का पूरा स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मुझे डीटी वर्शिप करने दो। ये रोग है एक्चुअली, जिसकी हमारी योग्यता नहीं है वो भी हमको करना है। तो वो हमको तो हम जो योग्य है उसके लिए भी हक नहीं दिखाना चाहिए, आज्ञा होगी तो करना चाहिए। जिसपे के लिए हम योग्य है उसके लिए भी हम वो झंडा नहीं फहराते उसका कि मैं इसके लिए योग्य हूँ, मैं कब से कर रहा हूँ। वो भी नम्रता से ही करना है कि मैं योग्य नहीं हूँ। तो जिसके लिए नियम से ही योग्य नहीं है वो कैसे हम लोग डिस्काउंट लेके घुस सकते हैं उसके अंदर। हर चीज़ में वो कृपा और दया और करुणा नहीं होती है, कुछ चीज़ स्ट्रिक्ट होती है, उसमें से एक डीटी वर्शिप है। और कोई प्रश्न है? जिसके जीवन में बुरी घटना होती है वो भगवान की इच्छा से हो रही है, ये कैसे समझा जाए? आप बताइए उसका उत्तर क्या है, आपको क्या लगता है? जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ये आप भक्तों के संग में सुन सकते हो। अगर आपको ये समझना है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आपको नियमित रूप में सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में यही बातें बार बार होती रहती हैं। भगवान के इच्छा से बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भले आपके कर्म हो, लेकिन कर्म भी अगर कर्म का फल देना है कि नहीं देना है ये भी भगवान की इच्छा से होता है। भगवान को लगा नहीं देना है इस कर्म का फल तो नहीं देंगे वो, और भगवान को लगेगा देना है इसको तो वो दे देते हैं इसको। लेकिन जो भी दे होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। और उसके एक अंदर एक रहस्य की बात है समझो, आप अभी समझो आपने बहुत पाप किए हैं और पाप का लगातार फल मिल रहा है आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि ये तो भगवान मुझे उसका फल दे रहे हैं, ये मैंने पाप किया है। लेकिन अगर आप उस पाप के फल को भोगते हुए भगवान को थैंक यू बोलेंगे, बोलेंगे आप कष्ट हो रहा है आपको, बहुत पीड़ा हो रही है, और मैं बोल रहा हूँ उनको थैंक यू बोलो। जिस समय आप उनको कष्ट में थैंक यू बोल पाओगे, उस समय आपके अंदर दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, और आगे भी आप थैंक यू बोलने के लिए पावरफुल हो जाओगे। तत्तेनुकंपम सुषुमिक्षमानो मुंजान एवात, क्या आगे पूरा श्लोक मुझे याद नहीं, ब्रह्मा जी दशम स्कंद में बताते हैं, तत्तेनुकंपम सुषुमिक्षमानो मुंजान एवात अमिदं विपाको। वो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट में कष्ट में भगवान को धन्यवाद देता है और दंडवत करता है, उसके लिए मुक्ति के द्वार हक से खुल जाते हैं। ठीक है, पाची कीजिए कभी पाप किया उसका फल मिल रहा है, ठीक है, अभी उसका पाप का फल भोगते समय जब कष्ट हो रहा है तो भगवान को थैंक यू बोलो। जैसे थैंक यू बोलोगे तो मुक्ति के द्वार हक से आपके लिए खुल जाएंगे, कृपा से नहीं खुलेंगे, आपका हक होगा, वो भगवान का वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा आपके लिए। हरे कृष्णा। ठीक है, श्री राधा राधा नाथ भगवान की जय हो।